नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद प्रशांत।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एक दिवसीय अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला मुकाबला भारत ने अपने नाम किया। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने विदर्भ को दिया 281 रन का लक्ष्य। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बने बजाज पुणे ग्रैंड टूर के एम्बेसडर। सीधे चलते हैं हम क्रिकेट के मैदान की ओर। एक दिवसीय अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला मुकाबला भारत ने अमेरिका को 6 विकेट से हराकर अपने नाम कर लिया। हेनिल पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाए थे। बारिश बाधित मुकाबले को 37 ओवर का कर दिया गया और डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर भारत को 96 रन का लक्ष्य दिया गया था। भारत ने 18वें ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि जैसी उम्मीदी थी वैसा ही परफॉर्मेंस किया है भारत ने।
जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा मुझे लगता है कि वाइस डिसीजन था कि आप पहले बल्लेबाजी ना करके
गेंदबाजी कर
सामने वाले को खेलने का मौका दें, क्योंकि बादल छाए हुए थे, बदली थी मैच से पहले से ही, कुछ कंडीशंस ऐसी लग रही थी कि कुछ व्यवधान आ सकता है। तो उसकी वजह से एक हमें फायदा ये मिला कि जब 21 रन पे जब 2 विकेट थे, आपको ध्यान होगा, और उसी टाइम खेल रोका गया था। फिर जब बाद में अंपायर्स ने फिर जब लक्ष्य निर्धारित किया तो वो हमारे लिए बहुत आसान था, क्योंकि 37 ओवर में अगर आप 96 रन बनाने का दिया जा रहा है, और उस टाइम लगभग हम 48 या 50 रन के करीब पहुंच भी चुके थे जब ये दोबारा से जब ये ऐसा हुआ है, तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि ये एक खराब बात थी कि हमारे दोनों ओपनर बड़ी जल्दी चले गए थे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी थे जिनके ऊपर सारी नजरें रही होंगी इस मैच में, कि क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से आक्रामक बल्लेबाजी करते चले आ रहे हैं और जिस किस्म का खेल वो दिखाते हैं मैदान में और मुजाहरात करते हैं अपने बल्लेबाजी का, तो लोगों को जरूर निराशा हुई होगी कि वो नहीं चल पाए। लेकिन बात के क्रम ने जरूर इस मैच को अपने पक्ष में कर लिया, और खासतौर से अभिज्ञान कुंडू जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली, 8 शतक से थोड़ा पीछे रहे, 48 रन बनाए, लेकिन उन्होंने पूरा मैच अपने कब्जे में रखा। भारतीय टीम को कोई इस मैच में कोई ऐसी कोई दुविधा या संशय जैसी कोई बात तो थी नहीं, क्योंकि अमेरिका तो एक अभी क्रिकेट की एक नई टीम है, उभरती हुई टीम है, ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी ही वहां पे खेलते हैं, खेल रहे हैं, असलियत यही है। आप जितने भी आप नाम उठा के देखेंगे वो सब भारतीय ही नाम आपको नजर आएंगे, तो ऐसी कोई चुनौती तो नहीं थी। लेकिन चूंकि पहला मैच था, मौसम की कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी, उस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि जो शुरुआत है वो अच्छी रही, सकारात्मक रही।
हालांकि भारत ने जब बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम उतरी तो 25 रन पे उन्होंने 3 विकेट गवा दिए थे। अभिज्ञान कुंडू ने शानदार पारी खेली, नाबाद 42 रन बनाकर उन्होंने पारी को संभाला।
जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि अभिज्ञान कुंडू का जो प्रदर्शन है वो काफी ठीक अच्छा रहा, काबिले तारीफ रहा, जो उन्होंने पारी संभालने का काम किया। जो हमारे दोनों ओपनर्स हैं वो तो बहुत जल्दी चले गए थे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का भी मैंने नाम लिया, तो रन में पहले जब बताने में उस टाइम उसे चूक हुई हो, उन्होंने 42 रन बनाए जैसा आपने बताया, मैं शायद कुछ और पहले कह गया था।
जी, और उधर तो, गेंदबाजी में अगर हम बात करें, हेनिल पटेल ने 5 विकेट लिए और सिर्फ 16 रन ही दिया, और एक मेडन ओवर भी किया उन्होंने, बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने, शुरू से ही डोमिनेट किया
उनका, उन्हीं की गेंदबाजी का जो है वो प्रभाव कह सकते हैं, जिसकी वजह से 107 रन पे टीम जो है ऑल आउट हो गई, क्योंकि जैसे ही वो आए उन्होंने अमेरिकी बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरीके से एक तरीके से झकझोड़ दिया। मध्य क्रम में थोड़े से कुछ रन बने, लेकिन फिर जब वो दोबारा आए तो उन्होंने फिर वही अपना जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे घातक वो की, और एक ओवर उन्होंने मेडन भी रखा लगातार। वो इससे पहले वो एशिया कप में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, वहां उन्होंने 5 विकेट लिए थे 4 मैचों में, तो हेनिन को एक अच्छा उभरता हुआ आप गेंदबाज भविष्य का मान सकते हैं। जिस तरीके से हम बल्लेबाजों की बात करते हैं कि हमारे पास कई अच्छे बल्लेबाज अंडर 19 से निकल के आ सकते हैं, उस तरीके से हम हेनिन पे भी अगर देखें तो उनमें भी काफी संभावना नजर आती है।
जी, जिस प्रकार से अभी हर्षित राणा ने टीम में जगह बनाई सीनियर टीम, उम्मीद करेंगे कि आगे चलकर हेनिल पटेल भी बुमराह और सिराज की तरह भारत का प्रतिनिधित्व करें।
देखिए, हमें अंडर 19 से यही हमारे लिए एक जरिया है, एक रास्ता होता है सीनियर टीम में आने का, और हमारे पास काफी खिलाड़ी टीम में अभी खेल भी रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में आएंगे भी, जो अंडर 19 से ही एक अपना रास्ता बना के प्लेटफॉर्म उसको इस्तेमाल करते हुए, विराट कोहली, रोहित शर्मा आप देख ही रहे
हैं,
इसी से आए, उससे पहले युवराज, कैफ वगैरह आए थे, सहवाग, मतलब हमारे पास जितनी भी बड़े खिलाड़ियों का हम नाम लें तो वो सब अंडर 19 खेल के इसी तरीके से हमें आए हैं
जी। और अगर हम सीनियर टीम की बात करें तो उधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 284 रन बनाए। 285 रन के लक्ष्य का जवाब में न्यूजीलैंड 15 गेंद शेष रहते ही उन्होंने हासिल कर लिया। डैरिल मिचेल ने नाबाद 131 रन की पारी खेली, वहीं विल यंग ने 87 रन बनाए। श्रृंखला में दोनों टीम एक एक की बराबरी पर है। जिस प्रकार का रन जो भारत ने बनाया पहले बल्लेबाजी करते हुए 284, इतना कम स्कोर भी नहीं था जो 15 गेंद शेष रहते न्यूजीलैंड ने हासिल कर लिया।
देखिए इस मैच में आप ये कह सकते हैं कि एक तो मिचेल और यंग को हम क्रेडिट देना चाहेंगे क्योंकि उन लोगों ने 162 रन की साझेदारी करी। उनके भी ऐसा नहीं है कि उनके विकेट नहीं गिरे थे, उनके शुरुआती विकेट, पहला विकेट तो 22 रन पे ही गिर गया था, फिर 46 रन पे, लेकिन उसके बाद जो साझेदारी हुई
जी
162 रन की, उसने पूरे मैच का रंग बदल दिया
जी।
भारत की तरफ से भी कुछ अच्छी पारियां खेली गई, शतक भी लगा, केएल राहुल ने शतक लगाया, बहुत अच्छी पारी उनकी कही जा सकती है इस मैच में
जी।
और लेकिन मिचेल ने जो है पूरा खेल बदल दिया
जी।
और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने हमारे गेंदबाजों का जिस तरीके से सामना किया
जी,
वो एक उसकी बड़ी तारीफ भी हो रही है और हमारे गेंदबाजों के लिए कुछ आलोचनाएं भी सामने आ रही हैं कि भाई आप विदेशी टीम को अपने मैदान पे रोक नहीं पाए और उनको अंदाजा था कि ये विकेट जो है वो धीमी चलेगी, तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी के भी समय उस तरीके से उसको इस्तेमाल किया और बल्लेबाजी के समय भी अपने को उसी तरीके से ढाला कि वो उन उस तरीके की गेंदबाजी का सामना कर सकें जिस तरीके के उनको यहाँ पे उम्मीद थी कि हमें मैच खेलने को मिलेगा
जी।
तो ये एक बड़ी चीज रही इस मैच के अंदर की न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अपने को बहुत अच्छी तरीके से इस मैच के लिए तैयार रखा और उसका फायदा उठाया
जी। और चर्चा करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट पर। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने विदर्भ को 281 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक विदर्भ ने 2 विकेट पर 191 रन बना लिए हैं। कर्नाटक के करुण नायर ने सर्वाधिक 76 रन बनाए, वहीं विदर्भ की ओर से दर्शन ने 5 विकेट लिए। उधर दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कल सौराष्ट्र और पंजाब के बीच खेला जाएगा। सबकी निगाहें थी देवदत्त पड्डीकल पर कि जिस प्रकार का उनका प्रदर्शन रहा, 721 रन बनाए उन्होंने 103 की एवरेज से, लेकिन आज उनका दिन नहीं था।
हाँ, आज उनका दिन नहीं था, आप कह सकते हैं। देखिए हर खिलाड़ी हर दिन नहीं उस तरीके से प्रदर्शन कर पाता है, प्रशांत आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इस बात को। लेकिन इसी मैच में कमाल की बात यह है कि इनके ठीक पीछे विदर्भ के अमन मुखाड़े का नाम लिया जाता है, वो दूसरे नंबर पे चल रहे थे और वो एक अच्छी पारी खेलने में सफल रहे इस मैच में। तो जहां पड्डीकल नहीं चल पाए, लेकिन मुखाड़े विदर्भ के लिए एक तरीके से मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रंप का पत्ता साबित हो रहे हैं या जो भी उनको आप उपमा दें, जो भी उसके लिए अलंकार इस्तेमाल करें, लेकिन वो बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और रनों के मामले में वो ठीक इनके पीछे, पड्डीकल के पीछे दूसरे नंबर पे मौजूद थे। और लेकिन आज के प्रदर्शन से ये साबित हो गया कि विदर्भ जो है वो भले ही युवा खिलाड़ी हैं उसके पास, क्योंकि कर्नाटक की बल्लेबाजी में एक गहराई मानी जा रही थी
जी,
लेकिन उस तरीके के फिर प्रदर्शन सामने नहीं आया। हालांकि कुछ अच्छी पारियां तो आई हैं
जी,
लेकिन मयंक अग्रवाल नहीं चले, जिस तरह से पड्डीकल नहीं चले, फिर करुण नायर ने अच्छी पारी खेली, ध्रुव प्रभाकर थोड़ा बहुत रन बना पाए, हालांकि कृष्णन श्रीजीत अर्धशतक बनाने में सफल रहे, लेकिन उस तरीके 280 रन कोई बहुत आप ये नहीं कह सकते, कोई बहुत माकूल टोटल नहीं कह सकते, क्योंकि आप विजय हजारे खेल रहे हैं, 50 ओवर का मैच है, घरेलू टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ 4 टीमें आप इस दौर में पहुंची हैं, तो जो टीमें आई हैं दूसरी टीमों को हराते हुए, अच्छा प्रदर्शन करते हुए, तो उनके सामने एक ये बहुत उपयुक्त टोटल नहीं कहा जा सकता, थोड़े रन और होने चाहिए थे। मुझे लगता है कि कम से कम 300 प्लस तो एक टारगेट होता ही होता,
15-20 रन भारत शॉर्ट रह गए।
हाँ, ये कह सकते हैं कि कर्नाटक थोड़ा, हालांकि कर्नाटक एक बड़ी टीम है, लेकिन हर मैच में आप जरूरी नहीं है। अब देखने वाली बात है कि विदर्भ को वो अभी भी मौका है कि कुछ ओवर अभी बचे होंगे खेल के
जी,
तो अब देखने वाली बात है कि उनकी गेंदबाज किस तरीके से इन बल्लेबाजों को रोकने में सफल होते हैं
जी। और चर्चा करते हैं महिला प्रीमियर लीग पर। वुमेन्स प्रीमियर लीग के आठवें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना लिए हैं। उम्मीद करेंगे 160 रन 70 तक पहुंच जाए मुंबई इंडियंस।
देखिए माना तो यही जा रहा है जब से ये लीग शुरू हुई है कि 150 से नीचे का स्कोर जो है वो सुरक्षित नहीं है
जी।
अब महिलाओं में भी आप देखिए कि इस तरीके के स्कोर देखने में आने लगे हैं, और आप सही कह रहे हैं कि जितना अगर इतना स्कोर बनेगा तो उसको सुरक्षित कह सकते हैं आप
जी। और उधर गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कल खेला जाएगा। वहीं कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 7 विकेट से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर यूपी वॉरियर्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। यूपी को शून्य पर ही सलामी बल्लेबाज किरण के रूप में पहला झटका लगा। कप्तान मैग लेनिंग ने फोएबे लिचफील्ड के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी की। लिचफील्ड 27 रन बनाकर आउट हुई, जिसके बाद लेनिंग ने हरलीन देओल के साथ तीसरे विकेट के लिए 85 रन जुटाए। लेनिंग ने एक छक्के और 9 चौकों के साथ 54 रन बनाए, जबकि हरलीन 36 गेंदों में 47 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुई। यूपी ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। मेरिजन कैप और शेफाली वर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। 155 रन के लक्ष्य के जवाब में शेफाली वर्मा और लिजेली ली की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी की। शेफाली 32 गेंदों में 6 चौकों के साथ 36 रन बनाकर आउट हुई, जबकि ली ने 44 गेंदों में 3 छक्कों और 8 चौकों के साथ 67 रन बनाए। लॉरा वॉलवॉट ने नाबाद 25 रन और जेमिमा रॉड्रिक्स ने 21 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मुकाबले की अंतिम गेंद पर लॉरा वॉलवॉट के बाउंड्री लगाने के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने पहली जीत का स्वाद चखा। अंक तालिका में दिल्ली चौथे, वहीं यूपी पांचवे और अंतिम स्थान पर है। बेंगलुरु पहले, मुंबई दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
उधर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वॉलवॉट को वर्ष 2025 के दिसंबर माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया। वहीं ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए। सीधे चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में के पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने जापान के केंता निशिमोतो को 21-19 21-10 से हराया। वहीं एचएस प्रणॉय और किदाम्बे श्रीकांत का सफर समाप्त हो गया। एकमात्र खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में लक्ष्य बचे हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं।
हाँ, वही है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि निराशाजनक है भारतीय खिलाड़ियों के लिहाज से, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और इतनी बड़ी खिलाड़ियों की फौज उतर रही है
जी,
तो कुछ खिलाड़ियों को तो आगे दौर तक आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका
जी।
और लक्ष्य के लिए भी एक चुनौती
जी
है इस साल, क्योंकि पिछला साल उनका बहुत अच्छा नहीं गुजरा है।
बिल्कुल,
मात्र उन्होंने एक खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन के तौर पे। उससे पहले हालांकि सितंबर में वो मलेशिया में फाइनल तक पहुंचे थे
जी,
लेकिन हांगकांग ओपन में फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन जीत नहीं पाए थे, रनर्स अप रहे थे
जी।
तो अब 2026 की शुरुआत उन्होंने मलेशिया से की, वहां प्री क्वार्टर फाइनल में वो उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां पे वो क्वार्टर फाइनल तक आए हैं। और अभी फिलहाल भारत की जितने भी बैडमिंटन प्रेमी हैं उन सबकी नजरें इन्हीं पर हैं, और उम्मीद है कि ये और आगे तक इनको जाना चाहिए जाएं। हालांकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं लग तो रहा है प्रशांत की कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं
जी,
लेकिन यही है कि जो पिछले साल जो उनका एक खराब दौर गुजरा है
जी,
अगर वो इस 26 की शुरुआत में यहीं पे उभर जाते हैं तो आगे वाला साल उनके लिए आगामी साल जो है बहुत अच्छा साबित हो सकता है जी।
भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर का एम्बेसडर बनाया गया है। ये टूर भारत में वैश्विक साइकिलिंग का प्रमुख आयोजन है। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये रेस देश में साइकिलिंग के नए रास्ते खोलेगा। पहले संडे ऑन साइकिलिंग और अब ये पहल, इस तरह के खिलाड़ी जब जुड़ते हैं तो युवाओं का मनोबल बढ़ता है।
बिल्कुल, देखिए धोनी तो असल खिलाड़ी हैं, वो फुटबॉल को भी पसंद करते हैं, मोटरसाइकिल खेल को पसंद करते हैं, क्रिकेटर वो थे, अब साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है
जी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। सचिन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद प्रशांत।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।